ओम शांति। इस सत्र में हम भोजन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे शरीर के लिए उपयोगी 5 आधारभूत पदार्थों के बारे में, जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है, क्योंकि भोजन शरीर की आधारभूत आवश्यकता है, तो भोजन का संतुलित होना बहुत जरूरी है। साथ साथ हमारे भोज्य पदार्थ में शामिल कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर के पोषण पर, या कहें जिससे हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है अनजाने ही, ऐसे पदार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे शरीर के लिए विशेषतः 5 पदार्थों की जरूरत है, जिसको हमने 2 भागों में बांटा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन और मिनरल्स। अब इनके ऊपर हम एक एक को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फैट के बारे में चर्चा करते हैं। फैट क्या है? फैट की बेसिक यूनिट है फैटी एसिड, और ये हमारे भोजन को टेस्ट देता है, उसकी प्लेटल वैल्यू को बढ़ाता है। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें फैट होता है। फैट 2 प्रकार का होता है, एक है विजिबल फैट, एक है इनविजिबल फैट। विजिबल फैट सभी प्रकार के तेल, जैसे सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, रेपसीड, वॉलनट, देसी घी, डालडा घी, बटर, ये सभी फैट विजिबल फैट है। इनविजिबल फैट जो हमें हिडन फॉर्म में डायरेक्ट प्लांट्स इत्यादि से मिलता है, सीड्स से मिलता है, और जो फैट हम खाते हैं उसके अंदर 3 तरह के फैटी एसिड होते हैं। एक तो है सैचुरेटेड फैट, जो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर भी सॉलिड फॉर्म में रहता है, जैसे बटर, घी, देसी घी, डालडा घी। ये फैट हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल भी कम करते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, पाम ऑयल से प्राप्त होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, एलडीएल को कम करता है, साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है। ये हमें मिलता है जैसे अवोकेडो है, रेपसीड है, ऑलिव ऑयल है, सोया ऑयल है, वॉलनट ऑयल। इससे हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। मार्केट में कुछ मार्जरीन भी मिलते हैं और उनमें से कुछ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, कुछ मोनो अनसेचुरेटेड फैटी से भी बने होते हैं, कुछ सेचुरेटेड फैट से भी बने होते हैं। तो हम बेटर है उनको अवॉइड करेंगे। एक तीसरी तरह का फैटी एसिड है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का ही एक विशेष प्रकार है। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं, इससे क्लोट नहीं बनते। ये फिश, ऑयली फिश के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके वेजिटेरियन स्रोत भी हैं, जैसे मस्टर्ड सीड जो ऑयल होता है उसके अंदर ये काफी मात्रा में पाया जाता है। जो हम दालें इत्यादि खाते हैं या लिग्यूम्स खाते हैं उनके अंदर भी ये तेल पाया जाता है। हमारी बॉडी भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाती है जब हम मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, वालनट ऑयल, सोया ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो हमारी बॉडी भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाती है। बाकी कुछ बातें जब चार्ट डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे। शुरू में सिर्फ हम फैट क्या है या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स क्या हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर डिटेल में एक एक चर्चा करेंगे। तो ये तो कुछ बताया आपको फैट के बारे में। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन की बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड। प्रोटीन के अंदर दो चीजें होती है, प्रोटीन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है इसका प्रॉपर डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता तो हमारे शरीर में यूरिया भर जाता है जिससे बोन्स में दर्द होता है और कई प्रॉब्लम्स आती हैं। ये हमारे शरीर की रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम दिन भर काम करते हैं तो सेल के अंदर जो टूट फूट होता है उसकी रिपेयर के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन विशेषकर हमें प्राप्त होता है दालों से, लिग्यूम से, इसका मेन स्रोत है। लेकिन साथ साथ यूं तो हम कोई भी चीज खाते हैं, हर चीज के अंदर ये अवेलेबल है। जैसे मिल्क का प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन भी है और फ्रूट्स वेजिटेबल से भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन मेन स्रोत है एनिमल प्रोटीन और लिग्यूम्स, दालें, ग्रेन इत्यादि, सेरेल इत्यादि भी आ जाता है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। इसमें तीन चीजें होती हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट हमारे डे टू डे एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, जहां फैट जो है वो ब्रेन के फंक्शन के लिए भी जरूरत होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल आपको बताया, स्टोरेज भी होता है, एनर्जी के लिए जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी के लिए जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर है, चीनी है, गुड़ है और अनस्किन पोटैटो, आलू, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मैदा की बनी हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस वगैरह, इन सब के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर फाइबर भी होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन की जरूरत होती है और फिर ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है। ये फाइबर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझें। फाइबर हमें कोई भी फल है, सब्जियां है, अनाज है जैसे गेहूं या सैरल राइस इत्यादि, लेग्यूम्स, सोयाबीन इत्यादि, सबके ऊपरी स्किन से हमें प्राप्त होता है और फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत रहती है वो समाप्त होती, आंतों की क्लींजिंग के लिए जरूरत होता है। इससे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, विटामिन ए सी ई। इससे ओबेसिटी कम होती है, ट्राइग्लिसराइड्स कम होते, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल भी कम होता है। हमारे ब्लड जिनको डायबिटीज होती है तो उसके अंदर भी ये अच्छा होता है, क्योंकि इससे जो ब्लड शुगर जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जब कॉम्प्लेक्स, जब कुछ भी चीज हम खाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, तो वो शिकायत भी हमारी धीरे धीरे, डायबिटीज भी ठीक होती है इससे। और आंतों की सफाई के लिए भी जरूरी होता है, टॉक्सिन्स आंतों में जो भी होता है वो भी बाहर निकालने में मदद करता है। फाइबर वाला फूड ज्यादा नहीं खाया जाता, तो जो हम भोजन करते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी हमें प्राप्त होता है। आपको सुबह जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है वो हाई फाइबर फूड है और फाइबर विशेषकर फली के अंदर बहुत होता है। ये ग्रीन जो फली होती है स्किन के साथ, इस बार नहीं बन रही है लेकिन अक्सर वही सब्जी बनती है, तो फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि हम जो भोजन करते हैं, जो जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, तो इससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन के पश्चात फ्री रेडिकल्स बनते हैं और जैसा हम भोजन खाते हैं उस हिसाब से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब हम एनिमल फैट या मांस मीट इत्यादि जो लोग खाते हैं उनके फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, जो बहुत सन रेज से एक्सपोज होते जाते हैं, जो सड़क के ऊपर स्मोक होता है उससे भी फ्री रेडिकल्स काफी बनते, जो हमारे सेल को डैमेज करते हैं, हमारे ऑर्गन उससे डैमेज होते हैं, जिससे जल्दी बुढ़ापा आता है। और फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर में ज्यादा होते हैं तो वो नुकसान करते हैं। उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, जो कि हमें फाइबर से मिलता है, विटामिन ए सी ई के इत्यादि। तो फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स जो है बेसिकली हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से प्राप्त होते हैं। जैसे विटामिन ए हमारे स्किन के लिए, आईज के लिए जरूरत होता है। विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए जरूरी होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी के अंदर। जब सुबह हल्की धूप के अंदर सैर करते हैं तो उससे ही विटामिन डी बनता है। साथ साथ विटामिन सी और ई, ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। विटामिन सी, इससे हमारे हार्ट की एंडोथेलियल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल बनती है। जब हम सुबह लेमन पानी लेते हैं तो अर्ली आवर के हार्ट अटैक अवॉइड कर सकते हैं, और ये ब्लड शुगर के लिए भी बहुत जरूरी होता है, वो भी कम होती है। लेकिन विटामिन सी जो है विशेषकर हमें मिलता है साइट्रिक फ्रूट्स से, जैसे ऑरेंज है, मौसमी, माल्टा इत्यादि, केनू इत्यादि, और आंवला है, कीवी फ्रूट्स है, टोमेटो है, मेलन है, इवन वेजिटेबल जैसे गांठ गोभी, उसमें काफी वहां से हमें विटामिन सी प्राप्त हो सकता है। एक स्वीट पेपर होता है जो कि अपने यहाँ किसी एरिया में मिलता हो तो हमें नहीं मालूम, जो हार्डली अवेलेबल होता है। तो इस तरह से हमें विटामिन सी काफी लेना चाहिए, जो कि आप देखते भी हैं आपके भोजन में चारों समय लेमन रखा होता है। मॉर्निंग में तो आप लेते हैं, डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में भी आपको मिलता है। तो विटामिन सी हमारे लिए जरूरी है। दूसरा विटामिन ई, जो कि हमें ऑयल, सीड्स, नट्स इत्यादि से प्राप्त होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल से भी प्राप्त होता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे क्लॉट नहीं बनते हैं, ब्लॉकेज भी नहीं, जो नहीं बन पाते, तो विटामिन ई हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे तो बहुत विटामिन्स हैं, लेकिन बेसिकली हमारे हार्ट के लिए जो जरूरी है विटामिन सी, ई, ए, इनके बारे में हमने चर्चा किया। फिर साथ साथ मिनरल्स, मिनरल्स बेसिकली हमें लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं। पत्ते वाली जो सब्जियां होती है उससे मिनरल्स मिलते हैं। अनेक तरह के मिनरल्स हैं, लेकिन हमारे हार्ट के लिए विशेषकर जैसे पोटाशियम है, ये बहुत जरूरी होता है। पोटाशियम ये जैसे हमें फ्रूट्स वेजिटेबल से भी मिलता है, इसलिए आपको दो बार ये दिया जाता है, फल दिया जाता है, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो होमोसिस्टिन लेवल है वो भी एक कारण बनता है हार्ट प्रॉब्लम्स का, तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए भी हमें पोटाशियम की जरूरत होती। बाकी पोटाशियम हमारे दोनों बीपी को, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, इसको कंट्रोल करता है। सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और मैग्नीशियम हमारी आर्टरी को फ्लेक्सिबल बनाता है। साथ कैल्शियम जो है दोनों बीपी, डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक, इसको रिड्यूस करता है। बाकी जो साल्ट है वो तो हमारी आर्टरी को स्टिफ करता है और इसलिए बीपी भी बढ़ता है उससे, इसलिए साल्ट हम बहुत कम से कम लेते हैं, पूरे दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं, 1 टीस्पून। वो हम डाइट चार्ट में ज्यादा डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन में, यहाँ सिर्फ हम थोड़ा सा ये बातें बता रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो भी बाद में पूछेंगे, ठीक है, अदरवाइज क्या होता है बीच में लिंक टूट जाता है। तो इस तरह से, और फोलिक एसिड का हमारे आजकल इतनी रिसर्च हो रही है, तो जितना भी फोलिक एसिड है ये हमारे शरीर के अंदर जो होमोसिस्टिन लेवल है इसको भी कम करता है और इससे हमारे अंदर में डिप्रेशन नहीं आता। जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं, लीफी वेजिटेबल इत्यादि लेते हैं, तो हमारे अंदर में खुशी बनी रहती है और शरीर धीरे धीरे ऊर्जावान होता जाता है। तो इस तरह से ये हमने 5 जो शरीर के लिए आधारभूत पोषक तत्व है उसके बारे में चर्चा की और इनका बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे वो तो हम डाइट चार्ट में भी आपको बताने वाले हैं। अब साथ साथ हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन से भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के कुपोषण का कारण बनते हैं। जैसे नॉन वेज फूड है, अंडा, मांस इत्यादि। आप में से कोई अंडा इत्यादि खाता है? नहीं खाता है। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं होता, कोई फाइबर इसमें नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर नहीं होता, फाइबर इसके अंदर नहीं होता। अंडा हाई कोलेस्ट्रॉल है। मांस मीट भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि जिन जानवरों का हम मांस मीट खाते वो वेजिटेरियन है और जो मांस है वो रिसाइक्लिंग है। इससे हमारे शरीर में जो लोग मांस खाते हैं उससे कैल्शियम की निकासी होती है और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बोन्स के लिए, सेल्स के फंक्शन के लिए, हमारे टीथ के लिए, दांतों के लिए। जो लोग मांस इत्यादि लेते हैं उनका मान लीजिए अगर एक्सीडेंट इत्यादि भी हो जाता है तो हड्डियां जुड़ने में काफी टाइम लगता है और जितने भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी मांस भक्षण के लिए नहीं है। हमारी आंतें लंबी होती हैं, जो जानवर मांस खाते हैं उनकी आंतें छोटी होती है। उनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस है हम वेजिटेरियन से 10 times ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए जब हम मांस खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस इतना स्ट्रांग नहीं है और आंतें भी लंबी है, तो डाइजेशन के पश्चात लंबे समय तक वो आंतों में ही पड़ा रहता है और उससे टॉक्सिन्स भरते रहते हैं जो हानिकारक है। जबकि जो मांस मीट खाने वाले होते हैं उनकी आंतों से अनडाइजेस्टेड जल्दी से बाहर निकल जाता है। हमारा डेंटल डिजाइन भी ऐसा नहीं है। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, उनका जबाड़ा सिर्फ ऊपर नीचे घूमता है, जबकि वेजिटेरियन जीभ से पानी नहीं पीते, होंठ से पानी पीते हैं और उनका जबाड़ा भी हम ऊपर नीचे चारों तरफ घुमा सकते हैं। जो मांस खाने वाले होते हैं उनको अंदर जो भी वेजिटेरियन जब खाते हैं तो इससे टॉक्सिन बढ़ता है जिससे हमारा एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे अंदर में बढ़ते हैं। इसलिए जरूरी है हमें मांस नहीं खाना चाहिए। और जितने भी ये जो लोग इनको कट करते हैं तो मारने से पहले जानवरों को भी ये वाइब्रेशन आते हैं कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उनका मांस मीट पहले ही विषाक्त हो जाता है। वैसे भी ये स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है और हार्ट के पेशेंट के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आजकल तो सब कंट्री में जो पहले भी खाते थे वो भी इसको खाने के लिए मना करते हैं। नहीं, फिश से जो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात है, फिश में तो 0.2 ओमेगा 3 ये फैटी एसिड है, जबकि हम ये लोबिया है लेते हैं या मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, सोया ऑयल यूज करते हैं, उससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो हमें वेजिटेरियन सोर्स यूज करना चाहिए, ठीक है, फिश नहीं लेना चाहिए। एक मिथ है, पहले कि एक बार ये रिसर्च आई थी, जबकि मैक्सिमम ये मस्टर्ड सीड ऑयल के अंदर होता है, फिर सोया ऑयल के अंदर होता है, सीड्स के अंदर भी होता है, ऑयल के अंदर भी, तो हम वो क्यों ना यूज करें। इसलिए आप लोगों को जो तेल बताया जाएगा वो जैसे सोया ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, बाकी कुछ अच्छे ऑयल है, ऑयली ऑयल है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। जो लोग खा सकते हैं वो भले ही इसको यूज कर सकते हैं। और वालनट है, रेपसीड ऑयल, ये एवोकेडो इत्यादि, ये अपने यहाँ मिलता नहीं है। तो जो हम खाएंगे ना लिग्यूम्स वगैरह, उनसे भी हमें ये अवेलेबल होता है, दालें इत्यादि से, राजमा है, लोबिया इत्यादि, उड़द की दाल होती है स्किन छिलके के साथ, तो वहां से हमें इनको लें। तो इस तरह से, हाँ जी, नहीं अभी मैंने एग्स के बारे में आपको बताया, आपको जो कारण बताया जाता है कि उसमें फाइबर नहीं है, वो तो हाई कोलेस्ट्रॉल है। एग क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो हमें वो लेना चाहिए? नो विटामिन सी, नो, बच्चों के लिए भी नहीं। हम वेजिटेरियन चीजें लें, ठीक है ना, बच्चों को भी ऐसी आदत डाले ताकि उनकी आदत शुरू से ही ऐसी बनी रहे। फिर भी मैं बार बार यही कहूंगी, क्वेश्चन आप बाद में पूछेंगे अच्छा रहेगा। जैसे आपको बताया एग क्या है, यूं तो जो डॉक्टर शराब पीते हैं ना वो कहेंगे आप शराब ले सकते हैं, एक दो पैक से कुछ नहीं होता। जो स्मोकिंग करते हैं वो ये कहेंगे आप स्मोकिंग, लेकिन हम इसका कारण समझा रहे हैं आपको। क्या इन चीजों का हमारे माइंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, सिर्फ बॉडी पर नहीं माइंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, जो आपको अभी क्लियर करेंगे। तो अंडा मांस नहीं लेना है, साथ साथ हमें शराब नहीं पीना है। वैसे तो मैं समझती हूँ यहाँ कोई भी नहीं लेता होगा, पीता है कोई? या कोई सोचता हो भाई पहले पीते थे अच्छा होता है, तो वो भी जरा सोच ले, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि फिजिकल इफेक्ट तो इससे क्या होता है, बीपी बढ़ता है, हमारी हार्ट मसल वीक होती है, इससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इससे हमारा लीवर भी वीक होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इससे एंजाइटी बढ़ती है, स्लीपलेसनेस आती है, डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, शॉर्ट टेम्पर्ड हम बनते जाते हैं। तो शराब हमें नहीं लेना चाहिए। जो लोग कुछ कुछ फायदा बताते हैं उस वो थोड़े सा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं उसकी मात्रा में इन चीजों से बहुत कम मिलते हैं। और शराब इत्यादि जो पीते हैं इससे हमारा नर्वस सिस्टम बहुत वीक होता चला जाता है, हमारे ज्ञान तंतुओं का विनाश होता जाता है। तो देखो साइकोलॉजिकल भी कारण है और फिजिकल कारण भी है, इसलिए हमें शराब इत्यादि नहीं लेना चाहिए। और साथ साथ स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें निकोटीन होता है, और निकोटीन से हमारी स्लीपलेसनेस आती, उत्तेजना आती है, एंजाइटी बढ़ती हमारे अंदर में, और साथ साथ पल्पिटेशन होती। और ये निकोटीन चॉकलेट्स के अंदर भी होता है, कोला, कोका कोला हम पीते हैं, टी है, कॉफी है, उसके अंदर ये होता है। अगर निकोटीन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी नर्व्स वीक हो जाती, और जिससे हमारे हाथ और पांव, इनके अंदर पावर हमें महसूस नहीं होती, और इनसे काम लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारे हार्ट के लिए भी ये ठीक नहीं है निकोटीन, इससे हार्ट को काम करना मुश्किल होता। और जो स्मोकिंग हम करते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कम कर देता है, जिससे हमारे ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम उसको भी नुकसान होता है, और हार्ट को भी नुकसान होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी उससे नुकसान होता है। यहाँ तक कि तंबाकू इत्यादि भी, जो लोग तंबाकू खाते हैं ना, चबाते हैं, वो तो हम जानते हैं उनसे कैंसर इत्यादि तो होता है, लंग्स का भी होता और गले का भी कैंसर, जबाड़े का भी कैंसर होता है, तो इसलिए तंबाकू नहीं लेना चाहिए। बल्कि जो लोग खाते हो, आपके कनेक्शन में भी होते हैं, तो उनको हमें मना करना चाहिए। तंबाकू की लत छोड़ने के लिए बेटर है आप उनको, अगर ज्यादा से ज्यादा हम ये वेजिटेबल सलाद जो है, लीफी वेजिटेबल और इन चीजों का हम ज्यादा इस्तेमाल करें, तो जो तंबाकू की तलब होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो तंबाकू इत्यादि भी, यहाँ तक कि कुछ लोग सूंघते भी हैं। आजकल हम देखते छोटे छोटे बच्चे भी खाते हैं, जबकि कहते एक एक्सपेरिमेंट किया गया कुत्ते के ऊपर, वो भी इसको नहीं सूंघता है। जो तंबाकू का खेत होता है वहां से कहते कोबरा भी अपना रास्ता बदल लेता है, घोड़ा गधा भी अपने रास्ता बदलता है। वही तो मैं कहती, कोबरा भी नहीं लेता है। और तंबाकू को कुत्ते को जबरदस्ती सुंघाया गया तो उसके लंग्स के अंदर कैंसर हो जाता है, लंग्स बिल्कुल खराब हो जाते हैं, और इंसान इसको ले रहा है। आज हम देखें कितनी इसकी कीमत बताई तंबाकू, ये शरीर की 220 करोड़ रुपए। और एक बार एक अंग भी खराब हो जाता है, पूरे शरीर का सिस्टम खराब हो जाता है। तो तंबाकू इत्यादि, निकोटीन इत्यादि हमको नहीं लेना। फिर नहीं, सुपारी इत्यादि भी नहीं लेना चाहिए, हमारे दांत के लिए भी इतना ठीक नहीं है। जो लोग खाते हैं, बहुत हार्ड होता है, दांत की जो कोटिंग होती है ऊपर, वो सारी इससे खराब होती है। वो पहले समय गया लोगों के, जो दांत तो मजबूत थे। आज कहां हमें भोजन से वो मिनरल्स मिलते हैं, है ही नहीं, भोजन में पोषक तत्वों की कमी है। फिर आता है प्याज लहसुन, वो तो खाते होंगे शायद, यहाँ पर खाते हैं कोई प्याज लहसुन? जो खाते हैं प्लीज हाथ उठाएं। तो आप ध्यान से सुने इसके बारे में। प्याज जो है उसमें ना के बराबर पोषक तत्व होते हैं, इससे ब्लोटिंग होती है और गैस बनती है। ब्लोटिंग समझते, अफारा, फूलता पे, और गैस बनती है। तो प्याज हमें नहीं खाना चाहिए। पोषक तत्व भी बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर है। ये तमोगुणी भोजन कहा गया, इसलिए ये कौन सी दुनिया में ये भोजन पैदा हुआ, इस कलियुग की दुनिया के अंदर। हमें लहसुन भी नहीं लेनी चाहिए, लहसुन से हमारा माइंड इरिटेट होता है, हमारी आंतों की स्किन उसे इरिटेट होती है, लहसुन से इंडाइजेशन होता है, अपच होती है, इसलिए हमें लहसुन भी नहीं लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। जैसे एजेंसी हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी ने रिसर्च किया, और एक साल की स्टडी के अंदर उसने ये पाया कि लहसुन से, जो हम कोलेस्ट्रॉल कम होने की बात करते हैं, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। शुरू में ऐसा लगता है कि कुछ कम हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं गहराई में, कि लोग कहते हैं कि लहसुन तो बहुत समय से हम खा रहे हैं, हमारे पुराने हर्बलिस्ट, फोक हीलर, इसको बहुत सारी डिजीज के अंदर, डिजीज को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और चीन के अंदर अलग अलग रीति से उनका मान्यता थी कि शायद ये उसमें फायदेमंद है। जैसे चीन के अंदर इसको बीपी कम होता है इसलिए इसको यूज करते, या जो इजिप्ट के अंदर इसे एज ए वो जो थे ट्रूप्स को, सेनानी जो होते ना उनको खिलाया जाता था कि इससे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। ग्रीस के अंदर इसको एज ए लैक्सेटिव यूज करते। और इस तरह से आज रिसेंट ये स्टडी है कि प्लाक कम करता है, यानी कि बहुत इसके ऊपर विचार है, लेकिन मे भी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज अगर लंबे समय से खा रहे हैं तो वो फायदेमंद है। लहसुन के ऊपर 1980 तक 500 पेपर्स, रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और उनके रिसर्च का जो कंटेंट था वो था सल्फर, जिसकी वजह से इसके अंदर बदबू होती है। और सल्फर डायरेक्ट नहीं मिलता हमें लहसुन, इसका एक बाय ये हमें मिलता है एलिसिन, और एलिसिन के भी बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि एलिसिन भी हमें डायरेक्ट लहसुन के अंदर नहीं मिलता है। जब लहसुन को हम कट करते हैं, कुक करते हैं, उसको चबाते हैं, तब ये एलिसिन बनता है, और उसके भी जो बाय प्रोडक्ट है एजोन, एलल सल्फाइड, सल्फाइड एलल सिस्टेन, इस तरह से एक काफी बड़ा कैस्केट है, जिसको कि एंटी फंगल, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी क्लोटिंग समझा जाता है। लेकिन कितनी मात्रा में कितनी लहसुन खाने से हमको ये मिलेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि एलिसिन जो है वो एक अनस्टेबल सब्सटेंस है, और एलिसिन जब हमारे आंतों के जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसके कांटेक्ट में आता है तो जल्दी ही फिनिश होता है। अगर इसलिए जो इसके प्रोडक्ट भी बनते हैं लहसुन के, वो जो कोटिंग होती है वो कोटिंग बहुत कम ये डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और जब हम डायरेक्ट लहसुन खाते हैं तो जो एलिसिन बनता भी है वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आता है, जिससे एलिसिन निकलना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। और कुछ सर्वे हुए हैं जो लहसुन के प्रोडक्ट के अमेरिका के अंदर, उसमें उन्होंने पाया 80% प्रोडक्ट का सर्वे किया, और जो ये कंपनी जितना एलिसिन इसके अंदर होने का दावा करते हैं उससे 15% से भी कम उसके अंदर एलिसिन पाया गया। तो हम सोचें, क्या लहसुन प्याज हमारे लिए सही है? अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट ही चाहिए तो उसके लिए हम ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स खाएं ना, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें और सीजनल खाएं। तो लहसुन प्याज दोनों ही क्या है? तमोगुणी भोजन है। ऐसे ये शराब, अंडा इत्यादि, ये कैसे फूड है? तमोगुणी भोजन है, जिसका हमारे शरीर के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है और हमारे माइंड के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो प्याज लहसुन, वैसे भी राजयोगी लाइफस्टाइल के अंदर प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। तो जो भाई बहन खाते हैं वो क्या करेंगे? खाएंगे? एजुकेट इसलिए किया जाता है, यही नहीं कह दिया कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना। यूं लंबी हिस्ट्री है, कितना भी बताएं, मेन कारण है कि इससे ऐसे कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जो अगर ना के बराबर थोड़ा बहुत इफेक्ट है भी, तो उसका जो बेस्ट चीज हम मार्केट में जब लेने जाते हैं तो हम सब तरह की चीज देखते, क्यों बेस्ट चीज चूज करते हैं? अनेक तरह के मैंगो हो गए, लेकिन हम कौन सा बेस्ट क्वालिटी यूज करना चाहेंगे? यानी तो अपने शरीर के लिए भी जो बेस्ट फूड है हमें वो इस्तेमाल करना है। फिर जैसे टी है, कॉफी है, ये हमको नहीं लेना चाहिए। टी के अंदर भी कैफीन, वो निकोटीन होता है, उसका नुकसान बताया। चलो थोड़ी मात्रा में जो लोग चाय इत्यादि लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब हम ज्यादा मात्रा में इसको लेते हैं तो निकोटीन बॉडी के अंदर घटता है, हमारा नर्वस सिस्टम वीक होता है, हमारे हार्ट की मसल वीक होती है। एक कप चाय का पीने से 8 हार्ट बीट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, और इसके अंदर टैनिन होता है। जब भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद हम चाय का प्रयोग करते हैं तो इससे भोजन से जो हमें आयरन मिलना होता है उसके अब्जॉर्प्शन में डिले होता है। तो चाय हमको नहीं लेना चाहिए, जो इसके अंदर थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि की बात होती है, लेकिन उसका फायदा कम है नुकसान ज्यादा है। अब कौन सी चाय अच्छी होती है, मैंने एक जगह पढ़ा चाय भी कई तरह की होती है। यूं तो ग्रीन टी होती है, ब्लैक टी होती है, व्हाइट टी होती है। व्हाइट टी इज बेस्ट मानी जाती है, जो कि बहुत रेयरली अवेलेबल है और बहुत कॉस्टली है। फिर ग्रीन टी है, चलो थोड़ा बहुत इस्तेमाल के, आजकल कुछ जूस वगैरह के अंदर भी ग्रीन टी मिक्स कर देते हैं, वही कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हम चाय इत्यादि अवॉइड करें, ठीक है ना, अगर हमें जल्दी फायदा लेना है। ऐसे ही कॉफी, ये कहते हैं मूड चेंजर फूड है, टी है, चाय इत्यादि, इनसे मूड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना, जैसे शराब इत्यादि, कौन सा इफेक्ट आया, लेकिन हाँ स्मॉल क्वांटिटी, हाँ कितने देर के लिए, और धीरे धीरे वो धीरे धीरे डोज बढ़ती जाती है। डोज क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गन है वो वीक हो रहा है, फिर हम हाई डोज लेना शुरू करते हैं, फिर नहीं मिलता तो हाथ पैर कांपते हैं, फिर कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये चीजें नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट है। यूं तो अगर भोजन के अंदर पोषक तत्वों की कमी है उसका भी इफेक्ट आता है हमारे माइंड के ऊपर, शरीर के ऊपर। लेकिन मान लीजिए एक जैसे विटामिन बी है, जो कि हमारे मेमोरी के लिए जरूरी है, डाइजेशन के लिए भी जरूरी होता है, और कुछ मेंटल फंक्शन, दूसरे फंक्शन, इमोशनल फंक्शन के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन इसकी कमी को हम भोजन के जरिए पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि जो ऐसे भोजन है जिसके हमारे साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जैसे आपको बताया शराब इत्यादि, निकोटीन, इस चीज को हमें छोड़ना बहुत जरूरी है, ये हानिकारक भोजन है। तो ये आपको पोषक तत्व और कुछ ऐसे तत्व जो हमारे शरीर को पोषण में कुपोषण का कारण बनते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। अब मैं आपके सामने डाइट चार्ट रख लेती हूँ, कुछ बातें हम उसमें भी डिस्कस करते जाएंगे। और ये जो डाइट चार्ट आपको बताया जा रहा है, ये डाइट चार्ट ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू, DRDO दिल्ली, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाए गए इस CAD प्रोजेक्ट के अंदर प्रमाणित हो चुका है, और विश्व भर के शीर्षतम वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने, रोगियों ने इस डाइट की बहुत प्रशंसा की है, इससे होने वाले फायदों को देखते हुए। अब हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि भोजन में क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा भोजन किस समय लिया जाए, नहीं लिया जाए, जरूरी है ना। और हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जिसकी तुलना किसी मैन मेड मशीन से नहीं हो सकती है, जिसके ऊपर हमारे सोच, विचार, हमारा आहार, हमारी एक्टिविटी का बहुत प्रभाव आता है। इसलिए हमें विचारों के साथ साथ, कर्मों में सुधार के साथ साथ आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैसे बनाएं, कैसे सर्व करें, कैसे खाएं। भोजन विशेषतः हमारे शरीर की चार बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया, फिर से एक बार बता देती हूं। एक तो ये शरीर को एनर्जी देता है, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, शरीर से जो हम कार्य लेते हैं तो सेल में वियर टियर होती, उसकी रिपेयर के लिए जरूरी है। तीसरा, शरीर के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, जो विटामिन्स और मिनरल्स जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। चौथा, शरीर की क्लींजिंग के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है, जिसे पानी भी है, फाइबर है, सफाई के लिए हमें बहुत जरूरी है। तो ये जो डाइट चार्ट आपको दिया गया है, इसमें इन चार बातों की तरफ भी विशेष ध्यान खिंचवाया गया है, और ये एक बहुत ही संतुलित डाइट चार्ट है जो हर एज ग्रुप के भाई बहनों के लिए सही है। इसके अंदर ये ध्यान रखा गया है कि मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क और फीमेल, मेल सबके लिए ठीक है ये डाइट। आपके पास है डाइट चार्ट? कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। अभी आप सुन लीजिए, आपको बताया इसलिए जा रहा है कि कोई भी कार्य जब हम उस अवेयरनेस में करते हैं तो उसका हम डबल फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने प्रैक्टिकल भी तो हो रहा है ना ये डाइट। सबसे पहले हम मॉर्निंग में 4:45 बजे क्या लेते हैं? लेमन पानी, एक गिलास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, और उसमें एक नींबू, 1/2 टीस्पून हनी। नींबू से विटामिन सी हमें मिलता है, टॉक्सिन इसे खत्म होते ब्लड शुगर में फायदा करता है, बीपी कंट्रोल होता है, एसिडिटी नहीं बनती है, और हमारी आर्टरी फ्लेक्सिबल होती है, अर्ली आवर के हार्ट अटैक अवॉइड कर सकते हैं। शहद से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जो हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए जरूरी है। ऑलमोस्ट सभी तरह के मिनरल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे तो हर चीज का नुकसान भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अलग अलग कंट्री के बने हुए शहद भी अलग अलग डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, हाँ वो मैं बता रही हूँ ना, डायबिटीज वाले शहद ना ले तो अच्छा है, वो लेमन पानी ले सिर्फ डायरेक्ट। और किसको? उसमें ऐसा कुछ नहीं ज्यादा, ये नेचुरल शुगर होती है, वैसे अगर नहीं लेंगे तो अच्छी बात है, और 1 टीस्पून से इतना इफेक्ट नहीं आता है। आप एकदम अगर कोई भी डाइट बहुत रिस्ट्रिक्ट लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए बिल्कुल फैट छोड़ दें या बिल्कुल ये, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। नेचुरल फॉर्म में थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए बस, लेकिन ज्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। और तो लेमन पानी हमको लेना है। फिर जब आप वॉकिंग के लिए जाते हैं, 5 बादाम, 1 अखरोट आपको दिया जाता है। बादाम से हमें मोनोसैचुरेटेड फैट मिलता है, जो कि हानिकारक नहीं है। हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल कम होता है। वॉलनट से ओमेगा 3 फैटी एसिड हमको प्राप्त होते हैं जो ब्लॉक बढ़ने नहीं देते। और साथ साथ नट्स के ऊपर बहुत स्टडी हुई है, आपको रिपीट बताया भी था कि नट्स के अंदर आर्जिनाइन केमिकल होता है और जो शरीर में जाकर प्रक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे आर्टरी की एंडोथेलियल वाल को फ्लेक्सिबल बनाता है उसकी। और वॉलनट के ऊपर भी स्टडी हुई तो कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट डेविस ने ये पाया कि वॉलनट जो है हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कम करता है, साथ साथ एचडीएल और एलडीएल में बैलेंस मेंटेन करता है। तो आपको रोज कितनी क्वांटिटी दी जाती है? बस इतना ही, हाँ, 5 बादाम 1 अखरोट। और लेना कैसे है? रात्रि में भिगोकर। इससे इसके नेचुरल एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है और इसके कुछ जो टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ऐसे ही हम जब अखरोट खाते हैं तो आप देखेंगे हीट भी बढ़ती है और वो कड़वा होता है, उसमें कुछ तेजाब जैसा होता है, इससे एसिडिटी बनती है। लेकिन अगर हम भिगोकर खाते हैं और उस पानी को फेंक देते अच्छे से धुलाई करके तो इससे ऐसा नुकसान नहीं होता। हाई फाइबर है, आप खा सकते हैं, निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, आपके ऊपर है। देखिए क्वेश्चन आप बाद में पूछेंगे, कैशोनट ले सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप बाद में पूछ ले, मैं डाइट चार्ट कंप्लीट करूं फिर हम थोड़ी देर 10-15 मिनट वो सब डिस्कस करेंगे। सीजन की कोई भी चीज हम बताएंगे आप ले सकते हैं, लेकिन कितना कैसे कितनी मात्रा में वो आपको बताएंगे बाद में, ये जो होते हैं ना टिप्स उसके अंदर बता देंगे। पहले हम एक बेसिक डाइट चार्ट डिस्कस कर लें, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अपने आप बताया जाएगा आपको। तो ये बादाम और अखरोट, ठीक है। अब 8 बजे आपको लेना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में 4 तरह का अंकुरित आपको दिया जाता है, मूंग चना मेथी और गेहूं। मूंग से हमें जब हम अंकुरित करके लेते हैं तो इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन हमको मिल जाता है। इससे कुछ विटामिन जैसे विटामिन बी ए सी ई इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। अंकुरित करने के बाद इनसे हमें एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में मिल जाते हैं। और फिर मेथी जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी होती है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए भी फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो क्लॉट नहीं बढ़ने ब्लॉक नहीं बढ़ने देते ब्लॉकेज और क्लॉट नहीं बनने देते। फिर चना, चने के अंदर फ्लेवोनाइड होता है जो ब्लॉकेज बढ़ने से रोकता है अंकुरित करने के पश्चात। गेहूं में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, इससे हमारे हार्ट की पंपिंग बढ़ती है। इस तरह से चारों तरह का अंकुरित लेना बहुत जरूरी है। एचडीएल बढ़ता है अंकुरित इत्यादि लेते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, जो डेड सेल है वो भी लाइव हो जाता है इससे और जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। तो हमें अंकुरित लेना है चारों तरह का, लेकिन अंकुरित पकाकर नहीं लेना, कच्चा ही खाना है। जिसको दांत की प्रॉब्लम होती वो चाहे कूट कर ले या तो मिक्सी में पीस कर ले सकता है। आप भले इसमें सीजन के हिसाब से कुछ वेजिटेबल जैसे मिक्स कर सकते हैं या लीफी वेजिटेबल जैसे कि पुदीना होता है, हरा धनिया होता है, ये आप इसमें डाल सकते हैं। लेमन आप डालें, ग्रीन चिली आप यूज कर सकते हैं, टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह और ये अंकुरित हमको रोज खाना चाहिए। जैसे आपको बताया है कि 3-4 चार चम्मच मूंग लिया तो 1 चम्मच चना ऐसे एक डेढ़ चम्मच ये मेथी और मूंग नहीं गेहूं, इस तरह से चारों तरह का अंकुरित हमको लेना है एक मुट्ठी के करीब। ये नहीं कि अच्छा है तो आज ज्यादा खा लेता हूँ कल, ऐसा नहीं। ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। फिर सुबह क्योंकि हाई फाइबर डाइट आपको दी जाती है, इसलिए कोई भी बीन्स की सब्जी बनाएं। यहां इस बार आपको नहीं मिली, एक दिन आपको मिली थी। कोई भी बीन्स आप सीजन की बनाएं, फली जानते हैं ना, तो कोई भी फली आप यूज करें, चोला की है चाहे सहेजना की है या फ्रेंच बीन्स है, सेम की फली है, इस टाइप से कोई भी फली आप यूज करेंगे। और दलिया दिया जाता है आपको, अच्छा है दलिये को अगर आप अंकुरित करके बनाए तो, अंकुरित करके गेहूं को सुखा कर फिर आप दलिया बनाएं। इस तरह से आप दलिया बनाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है ओट ब्रान के जैसे हो जाती है। जहां ओट ब्रान मार्केट के अंदर 90 रुपीस केजी मिलता है, और अब ये जब हम घर में थोड़ा सा मेहनत समय लगाकर बनाते हैं तो ये 10 रुपए केजी के हिसाब से हमारे घर में, भाई जो गेहूं की कीमत है और अपनी मेहनत अपना समय, तो देखो कितना इससे फायदा होता है अंकुरित करके। और सीजनल वेजिटेबल डाल के दलिया बनाए, स्वीट दलिया नहीं बनाए, जो भी सीजनल वेजिटेबल आपको डालना है। ये सोल्यूबल फाइबर हमको मिल जाता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इजीली डाइजेस्टिबल भी होता है, हार्ट को ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ता, आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से उसकी स्टिफनेस कम हो जाती है। तो जब हम इस टाइप का भोजन लेते हैं, और ये भोजन ज्यादा भी नहीं खाया जाता क्वांटिटी के अंदर, और इससे शुगर भी हमारी ज्यादा नहीं बढ़ती है हाई फाइबर डाइट से। जैसे मेथी है, मेथी बताए ना, इसे हार्मोन सिस्टम भी हमारे सेट होते हैं, ब्लड शुगर के लिए भी फायदेमंद है। जो हाई फाइबर डाइट है ब्लड शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छी डाइट है, ओबीज वाले के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से चारों तरह का अंकुरित दलिया और फली की सब्जी। लेकिन हमारी साइकोलॉजी है एक इंसान की, एक चीज जो रोज खाते हैं तो उससे बोर होते हैं, इसलिए आप 15 दिन में 20 दिन में महीने में अपने पसंद की कोई चीज, जैसे इडली है, डोसा है, कुछ लोग मुठिया बनाते हैं, या स्टीम कुक जो फूड बनता है, नॉन स्टिक जो फूड बनते हैं वो आप बना सकते हैं। बेसन का चीला है, दाल के चीला है, लेकिन जो बनाएं दाल का चीला तो बेटर है आप जो छिलके वाली दाल होती है उससे बनाएं, क्योंकि फाइबर ज्यादा किस में होता है, छिलके, उससे HDL हमारा बढ़ता है, वो फूड हमारा न्यूट्रिशियस बन जाता है। तो इस तरह से कोई भी अपनी मनपसंद चीज, बस आप डीप फ्राई चीजें ना लें, जैसे परांठा है, पूड़ी, समोसा, पकौड़ा इत्यादि। और फिर भी कभी बारिश का सीजन होता है, बहुत मन करता है, मान लीजिए एक पकौड़ा खा लिया, एक समोसा है तो आधा आप खाए, इस तरह से अपने आप को सेटिस्फेक्शन दिलाने की कोशिश करें। बाकी हम अपने मुंह से कहना नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा सा समझदारी आपको बता रहे हैं, ठीक है, खाना नहीं है वैसे वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ, वैसे मैंने कहा हम अपने मुख से कहना नहीं चाहते, अगर आपको थोड़ी सी ट्रिक नहीं बताएंगे फिर आप खाएंगे तो आप प्लेट भरकर खाएंगे। आप ब्रह्मा कुमारी के सेंटर की बात नहीं कीजिए, वहाँ आप लोभ के बस खाते हैं, आप अपने घर में क्यों नहीं बनाते, वहाँ आपको बना बनाया मिलता है ना, इसलिए खा लेते हैं। क्यों, इसलिए हम क्या कहते हैं, वहाँ जाएंगे तो हमें भोग भी के लिए भी मना करते हैं। हाँ भोग आप खा सकते हैं, फिर मैं यही कहती हूँ क्यों खा सकते हैं, आप दिल से भगवान का प्रसाद है। ऑपरेशन थिएटर में भी जाते वक्त अगर हम किसी को, हमारे यहाँ बनता है ना अमृत बनता है ये, तो अगर दो बूंद अगर हम डालेंगे तो डॉक्टर भी इसको मना, और हमने किया भी है ऐसा, तो प्रसाद के फॉर्म में खाना और कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर खाना, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए हम उनको बताते, या तो आप फल लें, जरूरी नहीं है बहन जी से पूरा फल लें, वन पीस लीजिए, ताकि बहन जी को भी ये लगे कि हाँ भाई इनको मैं ये दे सकती हूँ। रोज हर थर्सडे को आप बड़ा फल लेंगे तो हो सकता है कोई सेंटर अफोर्ड कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी स्वीट्स भी है तो दो दाने बूंदी के ले लिए, कोई भी इस टाइप से लो तो कोई हर्जा नहीं, वो नुकसान नहीं करता, नहीं तो फिर नुकसान होता है, बहाना हो जाता है। अच्छा, ये बीच में बात आई, चलो फिर हमें 11 बजे फल खाना, कोई भी फल खाएं 11 से 12 के बीच, सीजनल फल खाएं। डायबिटिक जो भी भाई बहन होते उनको जूस नहीं पीना होता है, और जो बहुत स्वीट फल होते हैं जैसे चीकू है, सीताफल है, ग्रेप्स है, हाँ केला है, केला में भी जो एलची स्मॉल साइज केला होता वो आप खा सकते हैं। ऐसे ही मैंगो है, आजकल सीजन में मैंगो आता, लेकिन कोई मैंगो बहुत स्वीट होता है, कोई नहीं होता, और कोई मैंगो ऐसा भी होता है जो शुरू में मैंगो आता है जिसको सफेदा मैंगो बोलते हैं, जैसे आपको भी ये दिया, इनका हम स्किन भी थोड़ा खा सकते हैं, तो वो अगर हम खाएंगे फाइबर के साथ तो वो नुकसान नहीं करेगा। फिर भी यहाँ ये आपको सचेत करना जरूरी हो जाता है कि पूरा मैंगो ना खा के आधा खाएं, या आधे में से भी आधा, साइज देख लें उसका जो डायबिटीज है। बाकी तो दूसरे भाई बहन कोई भी फल खा सकते हैं, उसमें फ्रूटोज होता है, नेचुरल शुगर होती है जो हमें नुकसान नहीं करती है। अच्छी तरह से धुलाई करके दाग वाग निकाल के हमें फल खाना है सुबह 200 ग्राम के करीब, ठीक है। और भोजन से 11 से 12 के बीच में हम ये फल खा लें। विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, भोजन के पश्चात कभी भी फल ना खाएं, क्योंकि फल 10-15 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेशन होने के पश्चात ये फर्मेंट होना शुरू होता है जिससे गैस बनती है, और सॉलिड भोजन के डाइजेशन में समय लगता है, 2.5 घंटे 3 घंटे ज्यादा भी लग सकता है, तो सॉलिड भोजन उसके सामने एक बैरियर आ जाता है। फिर इसके लिए एक एग्जाम्पल देते, जैसे आपकी गाड़ी के सामने बैलगाड़ी आ जाए तो आपके माइंड में कैसे इरिटेशन होती है, जब गैस बनती है तो धकार आती है, और कैसे इरिटेशन हमारे माइंड में भी, चिड़चिड़ापन नहीं आता गैस बनने से, और हमारी फिजिकल पावर भी कम होती है, हमसे काम नहीं होता, मेमोरी लॉस भी होता है, जितना ज्यादा गैस बनता है उतनी ज्यादा हम चीजें भूलते जलती है, इनका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए फ्रूट्स कब लेना है, हाँ 11 से 12 के बीच में। आपका यहाँ जो डिले होता है ना, इसकी परवाह नहीं करें थोड़ा, क्योंकि यहाँ सिखाना होता है तो टाइम ऊपर नीचे होता है। फिर आपको 1 बजे से 2 बजे के बीच में लंच लेना है। इसमें सबसे पहले आपको 2 टीस्पून इसबगोल दिया जाता है और 1 गिलास पानी। इसबगोल सोल्यूबल फाइबर है, इसबगोल जब आपको देते हैं तो इससे 10-12% जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, HDL बढ़ता है, आंतों से सब टॉक्सिन्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे आंतें क्लीन होती है। इसलिए हमें क्या लेना है, 2 टीस्पून इसबगोल 1 गिलास पानी के साथ जरूर। अगर पानी हम कम पियेंगे, क्योंकि इसबगोल फूलता ज्यादा है तो उससे भी नुकसान होता है। और फिर आपको पहले इसबगोल लेके फिर सलाद लेना है, कोई भी सलाद आप ले सीजनल, 1/4 प्लेट के करीब। और सलाद आप लेंगे, आप उसमें चाट मसाला, साल्ट इत्यादि नहीं यूज करें, लेमन यूज कर सकते हैं, धनिया पत्ता इत्यादि आप डाल सकते हैं, और दांतों की प्रॉब्लम है आप ग्रेट करके भी सलाद खा सकते हैं, उससे आप ज्यादा मात्रा में भी खाएंगे। सलाद खाएंगे तो ये हमारे लिए कौन सा फाइबर हो गया, हार्ड फाइबर हो जाता है, एक होता है सोल्यूबल, एक इनसोल्यूबल, एक्चुअल में ये जो है इस सब बोलिए सोल्यूबल फाइबर और ये इनसोल्यूबल फाइबर, ये आंतों में झाड़ू का कार्य करता है, एकदम आते क्लीन करते, टॉक्सिन इससे भी बाहर निकलते हैं। और इसबगोल सलाद कभी भी हमें भोजन के पश्चात नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसबगोल अगर हम भोजन के पश्चात लेंगे तो डाइजेशन के पश्चात जो एनर्जी हमें मिलती है वो इस फाइबर के ऊपर जाती है या सलाद के ऊपर भी जाती है। और सलाद अब्जोर नहीं होता, सोल्यूबल फाइबर तो फिर भी कुछ मात्रा में अब्जोर हो जाता है, दूसरा फाइबर तो बिल्कुल इनसोल्यूबल तो बिल्कुल अब्जोर नहीं होता। इससे जो हमें भोजन से एनर्जी मिली है वो सारी वेस्ट जाती है, जो बाहर निकल जाती है। और इसलिए हमें क्या करना है, दोनों सलाद और इसबगोल फल भी पहले खाना है भोजन के। कभी अगर बाई चांस मिस भी हो जाता है तो बाद में नहीं लेना चाहिए। और कोई भी दाल आप खाएं, लेकिन छिलके के साथ वाली दालें आप खाएं, क्योंकि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन मिनरल्स, वो स्किन के अंदर ही होते हैं। धुली हुई दालों से आपको कोई विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते। उसकी प्रोटीन वैल्यू बढ़ाने के लिए भले आप इसके अंदर वो वेजिटेबल आप मिक्स करते हैं, लीफी वेजिटेबल भी मिक्स करते हैं, कई बार हम घी या जो होते हैं ना दूधी या कैरेट इत्यादि, बीट रूट इत्यादि डालते हैं, उससे उसकी प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है। दाल पतली ही बनाए, कोई भी दाल आप खाएं, लोबिया, चना, राजमा, सोयाबीन, कोई भी आप यूज करें, मूंग दाल भी, कोई भी दाल जब कह दिया तो कोई तुहर दाल छिलके वाली होती है तो बेस्ट है, लेकिन छिलके वाली यूजुअली नहीं मिलती, तो इससे यूं तो फायदा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जब हम वेजिटेबल मिक्स करके बनाते हैं तो फिर ये फायदा थोड़ा है, बाकी वो दाल जो है उससे तो कुछ फायदा नहीं होता है। एक साइकोलॉजी मन की स्वाद की बात हम कहें तो इस तरह से दो तीन दाल मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। और कोई भी दालें आप यूज करें, जैसे और फिर हमको चपाती जो बनानी है उसमें 7 किलो गेहूं, 1 किलो चना, 1 किलो सोयाबीन जो अवेलेबल हो, तो 1 किलो जो भी आप मिक्स कर सकते। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, चना आप डालेंगे तो फ्लेवोनाइड हमको मिलते हैं। अब सोयाबीन की हम थोड़ी सी बात करते हैं, ये सोयाबीन जो है ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, ये लेग्यूम्स है। और सोयाबीन जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, वैसे ये राजमा इत्यादि वाल यहाँ मिलता है एक सफेद सफेद, अगर इनको हमको अच्छी तरह से धुलाई करके, इनको हमें बनाना ही ऐसे चाहिए, और धुलाई करके भिगो कर फिर उस पानी को फेंक के फिर उसको कुक करके फिर सुखा के फिर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए सोयाबीन का आटे के अंदर। और सोयाबीन के अंदर फैट, सैचुरेटेड फैट नहीं होता, इसमें विटामिन ई होता है, इसलिए तेल भी आपको कौन सा बताया जा रहा है, सोयाबीन का। ये हमारी बोन्स हार्मोन प्रॉब्लम्स के अंदर भी फायदेमंद है। और सोयाबीन में लेसिथिन होता है जो कि हमारी आर्टरी में जो फैटी मटेरियल जमा होता है उसको डिस्पर्स करता है। सोयाबीन का मिल्क भी बनाते हैं, सोयाबीन की वड़ियां भी बनाते हैं, इसलिए सोयाबीन का हम प्रयोग करें, अच्छा बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। और हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर कहते 13,000 के करीब लिग्यूम्स उगाए जाते हैं। अब कितने अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के होते हैं, ये जितने भी राजमा इत्यादि है, कई तरह के राजमा हमने देखे, ब्लैक भी होते, व्हाइट भी होते, बिल्कुल व्हाइट जैसे भी होते हैं, और अपने यहाँ भी 3-4 तरह के तो देखने को हमें मिले हैं। हमारे यहाँ एक बहन आती थी फॉरेन कंट्री से, मैक्सिको से आती शायद वो, तो वहां से वो ब्लैक कलर का एक बार राजमा लेकर आई थी। तो इस तरह से हमें ये चपाती बनाने, और चपाती बनाए उसमें साल्ट और घी नहीं डालें, तेल नहीं डालें। जब आप चपाती बनाएं तो बेटर है उसमें या तो वेजिटेबल ग्रेट करके या फिर लीफी वेजिटेबल, जैसे आलू का परांठा बनाते हैं ना, वो वेजिटेबल, ग्रेटेड वेजिटेबल, उसके अंदर भले आप जीरा, हींग, अजवाइन इत्यादि, अदरक, हरी मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से अनारदाना इत्यादि डालें, लेकिन साल्ट ना डालें। और इस तरह से आप स्टफ करके रोटी बनाएं, परांठा नहीं बनाएं, फुलका जिसको कहते हैं ना वो बनाएं, क्योंकि परांठा से ट्रांस फैटी एसिड ज्यादा बनते हैं। तो इस तरह से हमको रोटी बनानी है। और कोई भी सब्जी आप लीजिए, कोई भी सब्जी, राइस हमें या तो ब्राउन राइस यूज करें या जो पार बॉइल्ड राइस जिसको हम सेला राइस कहते हैं, ये राइस यूज करें। आप परमल राइस भी यूज करते हैं, यानी कि बिना पॉलिश वाला राइस हमको यूज करना है, उससे हमारा एचडीएल बढ़ता है। और जो बासमती राइस हम लेते हैं इससे एलडीएल बनता है। बासमती राइस जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक पॉलिश इसके ऊपर होती है। और जब हम राइस बनाएं तो वेजिटेबल डालकर पुलाव की फॉर्म में बनाएं, लेकिन उसके अंदर साल्ट ना डालें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो डालने से उसके विटामिन खत्म हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन सी आग के कॉन्टेक्ट में आने से फिनिश हो जाता है, इसलिए हमेशा नींबू कैसे यूज करते हैं, टेबल के ऊपर रखा जाता है, कभी भी पकाते वक्त लेमन नहीं डालते, आप डालेंगे तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। विटामिन बी कच्चा खाना चाहिए। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जब हम वेजिटेबल को कट करके पानी में पड़ा रहने देते हैं या कट करके धुलाई करते हैं तो पानी में ही कुछ विटामिन फिनिश हो जाते हैं। इसलिए अक्सर क्या कहा जाता है कि सब्जी को कट करने से पहले हमको सब्जी को धुलाई कर लेना चाहिए। अगर फिर भी कोई गंदगी रहती है तो जो उसे स्किन उतारा थोड़ा बहुत, फिर से धुलाई करें। इसलिए कुछ भाई बहन तो ये भी कहते हैं कि स्मॉल कटिंग ना करके पीस बड़ा रखना जरूरी है। और सब्जी भी कहते हैं पकाते वक्त उसमें साल्ट ना डाल के फिर हम बाद में थोड़ा सा यूज करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। और पूरे दिन में आपको एक टीस्पून से ज्यादा साल्ट नहीं लेना, 2 टीस्पून से ज्यादा ऑयल नहीं लेना, नो शुगर। ये मैं 2-3 बार आपको रिवाइज करा दूं, कहीं मैं भी भूल जाती हूँ कई बार, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक होता है ये। इस तरह से राइस हमने बनाया सीजनल, तो ये हमारा लंच तैयार हो गया। अच्छा, आपको भूख भी लगी होगी, अभी और 10-15 मिनट बस। फिर 4 और 5 के बीच में हमें फल लेना है, कोई भी फल हम खाएं। अब हम 400 ग्राम के करीब फल खाएं, इस तरह से हमारे के 2 बार फल हो जाते हैं 600 ग्राम के करीब। इससे हमें काफी मात्रा में पोटेशियम इत्यादि मिल जाता है, फोलिक एसिड मिल जाता है, और सोडियम पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन हो जाता है। फिर शाम को 6:30 या 7 से 8 के बीच में हम डिनर करें। सर्दियों में 6:30 से 7:30 लो, और अब गर्मियों में 7 से 8, क्योंकि शाम को ऑक्सीजन कम हो जाती है, डाइजेशन पुअर हो जाता है। तो फिर शाम को हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 टीस्पून इसबगोल, 1 गिलास पानी। अब शाम को सलाद कभी नहीं खाना चाहिए, इसके बजाय सूप ले हम। सूप आप सभी को बनाना भी आता होगा। रोटी सब्जी खाएं, हल्की सब्जी बनाएं, जैसे कल की सब्जी बनी थी, इसको कद्दू कहते हैं, यूजली इसको हम कोला पेठा के नाम से भी पुकारते हैं, राजस्थान में इसको कोला कहते हैं। ये जो पुअर पीपल होते हैं ना, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन ये हमेशा मेथी दाना और हींग डालकर जरूर बनाना चाहिए। यहाँ मेथी दाना यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये हमें जरूर डालना चाहिए। जैसे बनाया हुआ था कर, मेथी नहीं होती है, होते हैं ना। और हल्की सब्जी बनाएं, टिंडे, घिया, तोरी आजकल तो काफी मात्रा में आती हैं। शाम को कभी भी दाल, चावल, छाछ, कड़ी इत्यादि नहीं खाना। दही, छाछ इत्यादि कब लेवे? दोपहर में ले। अच्छा, ब्रेकफास्ट के अंदर हमने एक चीज मिस किया, सोयाबीन की कॉफी। वो आपको बता दें, थोड़ा बताया ना, कुछ चीजें हम भी भूल जाते। तो सोयाबीन जो है रोस्ट करके गोल्डन ब्राउन, और उसका पाउडर बना लें, फिर उस पाउडर से जैसे चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, एक कप बनाना है। तो फैट फ्री मिल्क लेकर, काउ मिल्क लें, बफेलो मिल्क लें, जो जैसे आपको सुविधा हो, उसके अंदर 1 टीस्पून पाउडर डालें, उसको बॉयल कर लें, और ये कॉफी आपकी तैयार हो गई। स्ट्रेन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप फ्लेवर के लिए जैसे अदरक है, इलायची है, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, तुलसी इत्यादि भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे सर्दियों में जरूरत पड़ती है ना, तो ये आपका पेय तैयार हो जाता है। अगर नहीं पीना है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, चाय नहीं देते, तो एक साइकोलॉजिकल चेंज है। इसलिए हमारे कुछ भाई सुबह सोयाबीन का अपने घर में ही मिल्क बनाकर यूज करते हैं। वो बहुत सहज है बनाना, जो आपको डाइट चार्ट मिलेगा उसमें भी लिखा है। सोयाबीन के सीड होते हैं, रात में भिगो दो, फिर मिक्सी में उसका पेस्ट बना के और स्ट्रेन करके बॉयल कर लीजिए। आप उसमें इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, पतला बनाएं तो अच्छा है। लेकिन अगर हमें उसका पनीर बनाना है, दही बनाना है, तो हम थोड़ा सा गाढ़ा रखें, क्योंकि इसमें टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। मार्केट का टेस्ट सही इसलिए होता है क्योंकि वो उसमें स्टार्च मिक्स कर देते हैं, जैसे कॉर्न फ्लोर मिक्स कर देंगे, राइस पाउडर मिक्स कर देंगे, इसलिए वहां के उसमें वो एसेंस भी मिक्स कर देते हैं, तो वो हमें पीना सहज होता है। लेकिन क्योंकि घर में हम इस तरह का मिक्सचर नहीं यूज करते, हम तो नेचुरली डालेंगे, हम क्या डालेंगे, इलायची डाल देंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप इसको पतला बनाएंगे तो अच्छा बनता है। तो इस तरह से हम सोयाबीन का मिल्क भी बना सकते हैं। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप कितना कार्य कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ ये डाइट? हाँ, रात को हमको मिल्क लेना है, जैसे आपको यहां मिलता है फैट फ्री मिल्क, मलाई हटा के मिल्क जब हम लेते हैं तो इससे हमें अच्छी नींद आती है। मिल्क के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है, जो ब्रेन में एक न्यूरो पेप्टाइड, जो कहते हैं ना न्यूरो ट्रांसमीटर, वो बनाता है जब ट्रिप्टोफैन जाता है। वो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? स्टीरोनिन। और इससे जो है ये ट्रांसमीटर जो है हमारे, इसका इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ड्राउजीनेस लाता है। जब हम रात को मिल्क लेते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। जो पिट्यूटरी सिक्रेशन, जो पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं, वो बैलेंस में निकलते हैं। तो इसलिए हमें रात को मिल्क लेना अच्छा है, कोई भी लीजिए। अब मैं गाय के बात बोल दूं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जहां गाय अवेलेबल नहीं है। यूं तो आज के दुनिया में कोई भी चीज शुद्ध है ही नहीं, ठीक है, लेकिन हम उसकी शुद्धता बरकरार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अगर हम भगवान की याद में उसको यूज करें, प्रॉपर तरीके से उस चीज का हम इस्तेमाल करें, ठीक है। इसलिए आपको मिल्क लेना है, अच्छी नींद आएगी और पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रेशन अच्छा होता है, पेन प्रिस्क्रिप्शन भी परसेप्शन इससे होता है। तो इसलिए मिल्क आप लेंगे, मिल्क में शुगर नहीं डालेंगे। अब शुगर क्यों नहीं लेना चाहिए? शुगर के बनाने की प्रक्रिया के अंदर पोषक तत्व निकल जाते हैं। हाँ, खजूर ले सकते हैं, लेकिन जो भाई बहन जिनको डायबिटीज है वो नहीं। यूं तो आप किशमिश भी ले सकते हैं, आपके पॉकेट के ऊपर है। आप खुमानी भी ले सकते हैं, स्वीटी कुछ चाहिए ना, तो वो भी आप ले सकते हैं। खुमानी है, किशमिश है, अंजीर होती है ड्राई, हाँ ले सकते हैं, आपके ऊपर है। नहीं, डायबिटीज वाले अंजीर ले सकते हैं। डायबिटीज वालों को हम यही बताते हैं, अगर आप ये डाइट लेंगे, हाई फाइबर डाइट, और फ्रिक्वेंट थोड़ी थोड़ी देर बाद, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे बाद, जैसे आपको ये डाइट बता रहे हैं, आप इस हिसाब से डाइट लेंगे तो आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी, होगी ही नहीं। डायबिटीज क्यों होती है? तनाव, ज्यादा सोच विचार, और जब हम एक बार में ज्यादा भोजन खाते हैं और लंबे समय तक भूखे रहते हैं, इसलिए इससे कहते हैं मूड डिसऑर्डर भी होता है। जब हम भोजन स्किप कर देते हैं तो एनर्जी कम महसूस करेंगे और हमारे जो मूड है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता है। अब ये मूड क्या है इसको आप समझ सकते हैं। दूसरा, अगर हम भोजन फ्रीक्वेंट लेते हैं, इससे एनर्जी भी बनी रहती है और हमारा मूड भी ठीक रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम भोजन ज्यादा लेते हैं उससे नुकसान होता है। उससे नुकसान क्या होता है? एक तो हमें आलस्य आता है, स्लीपी फील करेंगे, एनर्जी भी हमें महसूस नहीं होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें फ्रीक्वेंट फूड लेना चाहिए, दो तीन घंटे के पश्चात। जैसे क्या? बस जो समय आपको बताया, लेट की बात नहीं है, 7 से 8 चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 8 बजे के पश्चात हमारी बॉडी का साइकिल चेंज हो जाता है। सुबह 7 से शाम 7-8 बजे तक इनटेक पीरियड है, फिर साइकिल चेंज हो जाता है। डाइजेशन के पश्चात सफाई की प्रक्रिया शुरू होती है। जब बाद में हम भोजन लेते हैं तो वो उससे कोई एनर्जी हमको नहीं मिलती है। और जो बिल्कुल लेट भोजन करते हैं ना, 11-12 बजे, वो तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तरबूज ज्यादा स्वीट हो जाता है डायबिटीज वाले के लिए, थोड़ा वो रहने दे। इसके पश्चात ये जो कचरी, जानते हैं आप, अगर नहीं जानते, मेलन होते हैं, 3 तरह के मेलन होते हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, और वो दूसरा होता है, उसमें विटामिन सी होता है। वैसे इसके अंदर भी होता है थोड़ा बहुत विटामिन सी, पर थोड़ा सा स्वीट हो जाता है। जो भी बताया ना, जो ज्यादा स्वीट होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो आप कम मात्रा में ले सकते हैं। अनानास, वो तो स्वीट भी होता है, अनानास, ग्रेप्स है, अनानास है, स्वीट होता है, पर फाइबर के साथ कम मात्रा में थोड़ा सा। अब डिपेंड ऑन आपको कितनी शुगर है, आप इंसुलिन पर है, या फिर तो थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट डाइट लेंगे, फिर हाई फाइबर, फिर सोच विचार नहीं करें ज्यादा। हाँ, अगर दवाई से थोड़ा सा कंट्रोल है तो ठीक है, हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सोच विचार चेंज कर रहे हैं, वॉकिंग इत्यादि कर रहे हैं, हाई फाइबर फूड ले रहे हैं। तो डिपेंड्स ऑन आप किस टाइप से है, कई बार कोई चीज ज्यादा स्ट्रिक्ट भी फॉलो करनी पड़ती है। तो जैसे मैं शुगर की बात कर रही थी, तो शुगर से भी क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि इससे हाइपर एक्टिवनेस आती है, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए क्यों जरूरी नहीं है शुगर? क्योंकि इससे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, एलडीएल बढ़ता है, इसलिए हमें शुगर नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ रिसर्च में ये भी प्रूव करते हैं, जो स्वीट फूड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो फल होते हैं, जैसे मिल्क के साथ जब हम लेते हैं उसको, तो इससे हमारे मन शांत होता है। कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो सूदिंग इफेक्ट लाते हैं। और एक अच्छा एक रिसर्च में ये देखा गया कि जैसे शिमला मिर्च होती है, उसके अंदर अगर हम बॉइल्ड राइस, बीन्स, कुछ ब्लैक पेपर्स, अगर उसके अंदर भरकर हम बनाते हैं तो इससे हमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जो कि हमारे ब्रेन को में ऐसे केमिकल बनाते हैं जिससे ब्रेन शांत होता है। वैसे मन शांत होता है, ब्रेन की एक्टिविटी भी उससे शांत होती है। तो हम ऐसी डाइट थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं पुराने लोग जो थे सर्दियों के अंदर क्या करते थे, काली मिर्च यूज करके वो कुछ लड्डू इत्यादि भी सीड्स, विशेषकर सीड्स, कई तरह के सीड्स, जैसे मगज के बीज ले लिया है, खरबूजा के बीज, कई तरह के ऐसे सीड्स लेके, जैसे और भी कई चीज होते हैं छोटा छोटा, वो क्या होता है जो ठंडाई में यूज करते हैं, पोषक है ना, हाँ तिल, इस टाइप से, और काली मिर्च डाल के वो कुछ चीजें बनाते थे सर्दियों में, जो सूदिंग भी होती थी, हाइजीनिक भी होती थी, और उसके अंदर घी इत्यादि नहीं होता था। तो इस तरह से हम अपने माइंड को भी कूल कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं लेना है, वो है जैसे अचार है, नो अचार, ठीक है, तेल है उसमें, साल्ट है, प्रोसेस फूड जो बेकरी आइटम होते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट से बने हैं, उसमें क्या होता है, मैदा होती है, नमक होता है, सोडा होता है, तेल होता है और चीनी होती है। तो बिल्कुल भी ब्रेड इत्यादि के अंदर भी क्या होता है, सोडा के बिना तो ब्रेड नहीं बनती है, सोडियम है, सोडा क्या है, सोडियम, स्ट्रॉन्ग सोडियम। और पिज्जा है, जैसे केक इत्यादि, ये हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। आप चीज हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन आप मार्केट का नहीं, घर के अंदर जो हम फैट फ्री मिल्क से दही इत्यादि, लेमन इत्यादि डाल के जो पनीर बनाते हैं, वो आप कुछ मात्रा में कभी कभी लें। और चटनी आप ले सकते हैं, लेकिन चटनी में साल्ट कम डालें, ग्रीन चिली और लेमन ज्यादा मात्रा में डालें। ग्रीन चिली अच्छी होती है, इससे अल्सर नहीं बनते, विटामिन सी होता है इसके अंदर, और इससे एंजाइना का पेन भी नहीं होता है। हाँ, सब उसके विटामिन फिनिश विटामिन सी इसमें होता है, फिनिश बैटर है। आप ऐसे जैसे बताया जाता है ना, नहीं सब्जी पकने के पश्चात उसको कट करके खाएं, टेस्ट के लिए तो कैसे भी, आज हम टेस्ट के लिए तो सब कुछ जो थोड़े बहुत विटामिन हैं वो भी मिक्स हटा देते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, चीनी पद्धति के पंचतत्व के हिसाब से क्या कहते हैं, हमारे भोजन में टेस्ट का होना जरूरी है। पर वो टेस्ट का होना कब जरूरी है, कब आई ये चीनी पद्धति, द्वापर से, ये सारी बढ़ोतरी तब से हुई है। सत्युग के अंदर नेचुरल टेस्ट हमें हर चीज में अवेलेबल थे, क्योंकि जो तत्व थे सतो प्रधान थे, वहां टेस्ट जैसी बात नहीं थी। और जो हम भोजन भी लेते थे ना, वो उसका टेस्ट एंजॉय नहीं करते थे, क्योंकि आत्मा में अपना टेस्ट था, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद। तो वे भोजन के टेस्ट में नहीं जाती थी। जब आत्मिक पावर कम हुई तो हमारी, हमने टेस्ट कहां से लेना शुरू किया, भोजन के जरिए, अट्रैक्शन के जरिए। तो ये तब से आया। फिर भी क्योंकि आज भोजन में वो टेस्ट नहीं है, तो जैसा उस पद्धति के अनुसार बताया जाता है, वैसे मैं ये बातें कभी बताती नहीं हूँ, सिर्फ हमें डाइट की बातें बतानी है जो अपनी डाइट की बात है, लेकिन स्वाद के पीछे बहुत भागते हैं, इसलिए वो क्या बताते, क्यों जरूरी है, क्योंकि माइंड की साइकोलॉजी बोलते हैं कि नमक, नमक किसके लिए जरूरी है, हमारी किडनी के लिए वो जरूरी बताते हैं। अब कुछ नेचर क्योर वाले कहेंगे इस बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। वो क्यों कहते जरूरी, क्योंकि जो लीफी वेजिटेबल होती है उसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में काफी मात्रा में हमें अवेलेबल होता है, नमक, साल्ट, शुगर, ऑयल, जो भी चीज हम खाते हैं उसके अंदर होता है। लेकिन आजकल क्योंकि ये कम होते जा रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इसके लिए जरूरी बताते किडनी के लिए, और ताकि फिर जो खट्टे टेस्ट है वो हमारे लीवर और पित्ताशय के लिए, मधुर स्वाद हमारे स्टोमक और तिल्ली के लिए बताते, कड़वे टेस्ट हमारे हार्ट और छोटी आंत के लिए, जबकि तीखा टेस्ट जो है वो हमारे लंग्स और बड़ी आंत के लिए जरूरी है, टॉक्सिन्स नहीं होते। और इस डाइट के अंदर जो हम सीएडी के अंदर यूज करते हैं, ये डाइट चार्ट, सभी तरह के टेस्ट इस्तेमाल है। खट्टा टेस्ट है ना, क्या मिलता आपको, लेमन, टमाटर, अनारदाना, लेकिन कच्चा आम की खटाई नहीं, तो आपको खट्टा टेस्ट भी दिया जाता है लीवर के लिए। आपको तीखा टेस्ट भी दिया जाता है लंग्स इत्यादि, वो क्या दिया जाता है, ग्रीन चिली। आप ब्लैक पेपर भी यूज करते हैं, कर सकते हैं जैसे सूप इत्यादि के अंदर और बड़ी आंत के लिए। साथ स्वीट टेस्ट भी है, स्वीट टेस्ट में नेचुरल स्वीट्स है, आपको अंजीर बताया, खजूर बताया, किशमिश बताया। डायबिटीज वाले भाई बहनों को कभी प्रॉब्लम्स आती है तो हम यही कहते हैं आप ड्राई फ्रूट्स लेकर जाओ, शुगर नहीं खाओ, रिफाइंड प्रोडक्ट के मैदा से बने बिस्किट ना खा के उसकी जगह आप क्या खाएं, ग्लूकोज खा लें, अंजीर अपने बैग में से निकालकर यूज करें। तो स्वीट टेस्ट भी है इसके अंदर और कड़वे टेस्ट भी है। कड़वा टेस्ट में आपको क्या दिया जाता, करेला दिया जाता, अंकुरित मेथी दी जाती है ना, और नमकीन चीज हिडन फॉर्म में लीफी वेजिटेबल आपको काफी मात्रा में दिया जाता है। और यूं तो बिल्कुल हमने साल्ट कम नहीं किया, 1 टीस्पून साल्ट आप ले सकते हैं। तो सब टेस्ट भी इसके अंदर है, नेचुरल। हम जब खाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे संस्कार हैं वो चेंज हो जाएंगे और हम फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनाज का नेचुरल टेस्ट एंजॉय कर सकेंगे। तो इस तरह से हम ये डाइट लें। हाँ, पापड़ नहीं खाना याद आया जाते जाते, पापड़ नहीं खाना है। और बहुत मन करता है तो थोड़ा सा दस, वो मैं जस्ट बताना नहीं चाहती कि आप ज्यादा साइकोलॉजिकली, बाकी पापड़ ना खाएं, बहुत साल्ट होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा साल्ट, सोडा भी बहुत ज्यादा होता है, खार इत्यादि जो डालते हैं ना वो राइट नहीं है। हाँ, कुछ भाई बहन कहते हैं वो डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, वो तरीका बनाए तो कोई हर्जा नहीं, वो उसमें सोडा इत्यादि नहीं डालते, ऐसे ही बनाते हैं। कुछ दालों को कई दिन के भिगोकर प्रोसेस करके बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से, पर फिर भी नमक तो होता ही है वो। मैं उस हा? रागी भी क्या होती है, वो भी समुद्री झाग जैसे होती है, तो वो भी अच्छा। हाँ, वो रागी वो आप यूज कर सकते हैं, रागी है, नाचनी है, गुजरात में कोदरी भी मिलती है, तो ये चीजें आप बना सकते हैं। राजमा बताया तो खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, आप कितने की क्या बात है। हाँ, और जो मार्केट के बने हुए जो सॉस होते हैं, जैम होते हैं, शरबत होते हैं, ये आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनके अंदर विटामिन मिनरल्स नहीं होते, प्रिजर्वेटिव होते हैं। जैम खाया, प्रिजर्वेटिव है ही स्वीट्स, शरबत है उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव, क्या शुगर ही चलो प्रिजर्वेटिव है। तो हम फ्रेश लें, अगर हमें सॉफ्ट ड्रिंक लेना ही है तो ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक चूज करें जिसमें कैलोरी कम होती है, जैसे लिमका यूज करेंगे, आजकल ड्यू निकला है, ये हम यूज करें, ना कि कोका कोला यूज करें या पेप्सी यूज करें। तो इस तरह से मैं समझती हूँ ये डाइट कंप्लीट हुआ। और जो हमें वेजिटेबल इत्यादि बताया ना, इससे कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो किससे मिलता है, एनिमल फूड से। किसी भी वेजिटेबल की बनी हुई चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जो इनडायरेक्ट फॉर्म में सीड्स इत्यादि जो ये आपको बताए, इससे हमें फाइटोस्ट्रोल मिलता है प्लांट्स इत्यादि से। और फाइटोस्ट्रोल जो है ब्लड के अंदर घुलता नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट हिडन फॉर्म में आपको 2 टीस्पून ऑयल बताया, और इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स के जरिए, अनाज के जरिए फैट मिल रहा है। इसलिए आप ये ना सोचे कि आपको फैट कम मिल रहा है। और कैल्शियम भी जो है उसका एकमात्र स्रोत है। एक जैसे जैसे पेठा भी बताया, मिल्क है जो कि जो कैल्शियम हमें अब्जोर्ब होता है, क्योंकि वेजिटेबल का जो से जो हमें कैल्शियम मिलता है उसमें ऑक्जोलिक एसिड होने की वजह से वो हमारी बॉडी अब्जोर्ब नहीं कर पाती। इसी तरह अनाज इत्यादि से जो हमें कैल्शियम मिलता है उसमें फाइटिक अम्ल की वजह से वो अब्जोर्ब नहीं होता। कैल्शियम के आंतों में अब्जॉर्प्शन के लिए ये जरूरी है कि विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में हो। और विटामिन डी कब बनता है? जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है, और सुबह की धूप में जब हम सैर करते हैं उससे विटामिन डी बनता है। तो इसमें मिल्क भी लेना बहुत जरूरी है कैल्शियम के लिए और विटामिन डी के लिए। ऑयल का भी थोड़ी मात्रा में लेना जरूरी है। ओम शांति।